This is the Epilogue Audio Experience. You are listening to the Bollywood Music Podcast, where we get you some of the most brilliant minds of the music industry who have an inspiring story to share, unique life lessons to understand, and their creative discipline to inspire. This is the podcast where every week we strive to make your day shine bright with some beautiful renditions by these artists of not just their popular Bollywood songs, but also some never heard before songs. Some could be folk, some could be of a different genre altogether or a different language. And that makes this podcast absolutely entertaining. I hope you enjoy this episode like you have our previous ones, and those who have tuned in for the first time, a big warm welcome from me, Eva Bhatt, your host for this podcast, 9XM Soundcast. The singer of powerful songs like Ji Karda from Badlapur or Kawa Kawa version in Lucknow Central, to melodies like Sun Sathya or Halka Halka Surur, to absolute fun numbers like Ji Fadke or Isak Bazi, Divya Kumar is a joy to talk to, full of humor, masti and passion for music. I have asked him to speak about his learning from Amit Trivedi, Shankar Ehsaan Loy and Sachin Jigar, with whom he has worked extensively. He also talks about the art of imitation as a part of training oneself as a singer, his creative discipline and his latest song, the title track of Dabang 3. Enjoy this conversation with Divya Kumar.
जाऊं रे मैं तर जाऊं तर तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे.
हेलो,
हाउ आर यू दिव्या?
बस बढ़िया, बड़े दिनों के बाद.
या आई थिंक लास्ट वी मेट वाज ड्यूरिंग दिल धड़कने दो.
यस,
इट्स ऑलवेज फैंटास्टिक टू मीट यू दिव्या. आई थिंक यू हैव बीन जस्ट सो बिजी इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स.
मतलब काम ऐसा आया है कि यस, बहुत इंटरेस्टिंग काम करने का मौका मिला है. दैट आई एम रियली थैंकफुल एंड रियली ब्लेस्ड फॉर दैट. और इस पॉडकास्ट के बारे में मैंने काफ़ी सुना है. मेरे काफ़ी फ्रेंड्स और काफ़ी बड़े बड़े म्यूजिशियंस लोगों ने यहाँ पर आके बहुत धमाल मस्ती की है.
yes.
इवा के साथ में.
थैंक यू सो मच दिव्या. यू नो, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वी एज अ म्यूजिक इंडस्ट्री वी हैव ऑलवेज बीन लकी टू हैव सम अमेजिंग आर्टिस्ट इन ऑल ईराज, लाइक द गोल्डन ईरा और द 80s रेट्रो ईरा. देन केम द कलरफुल 90s व्हेन वी हैड उदित नारायण एंड कुमार शानू एंड अलका याग्निक एंड सुखविंदर सिंह. Today, we are lucky to have amazing, incredibly talented artists like Sonu Nigam to Shreya Ghoshal to Arijit Singh and Shankar Mahadevan. What I really mean by saying this is that, you know, the tradition of keeping the rich Indian music alive has been well continued by these amazing names. Mm. When you hear somebody like Divya Kumar, you feel that this tradition is in safe hands.
Wow.
Like, you know, when you entered the scene, when you came into the industry and when people heard you for the first time, the strong classical Indian base in your singing, that brought a ray of hope that the soul of Indian music is still alive.
Yeah, maybe I think being from a musical family really gave me that God gift. Like, mujhe mere grandfather, mere father, mere uncle, mere aunties, in sab se mila hai, aur I understand the value of रियल म्यूजिक, जिसकी लेगेसी. आई नो टाइम्स चेंज और हम बहुत इंस्पायर होते हैं बहुत सारे म्यूजिक से, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि द फोक एंड द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ आर इंडियन कल्चर, वो इतना रिच है, मतलब आने वाली पीढ़ियों तक हम लोग उसको पास ऑन कर सकते हैं और वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता. बिकॉज एक अंधा कुआं है जिसमें फोक और क्लासिकल जो खत्म ही नहीं हो सकता. सो आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आई वाज बोर्न इन अ फैमिली जिन्होंने म्यूजिक के अलावा कुछ किया नहीं है लाइफ में. सो आई एम आल्सो ब्लेस्ड कि मैं इस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए मुझे चुना गया है. सो आई होप कि मैं ऐसे ही उसको मैं कंटिन्यू करता रहूँ.
Absolutely. Like, you know, we are going to definitely talk about what you said, the folk music and the Indian classical music. Before coming to that, let's talk about Pandit Shivram ji and Bhagwan Shivram ji. Very few people know that your grandfather and your father, they have really contributed to the Indian music industry.
Yes.
Like, I think your grandfather worked with V. Shantaram.
Yes, yes.
And your father with R.D. Barmunda.
Yes. My dad, jo colorful 90s aap bol rahe hain, वो पूरा 90s का दौर इन्होंने रूल किया है. सो इफ यू हियर ऑल द ढोलक पार्ट्स इन ऑल द सॉन्ग्स, मेरे डैड, माय डैड वाज अ पार्ट ऑफ इट. एंड वो जमाने की बात है जब यू नो 100 म्यूजिशियंस एक साथ मिलकर रिकॉर्ड
लाइव,
और वो मैंने देखा भी है. सो आई एम रियली मतलब लक्की कि मैं वो सब देख पाया हूँ. इसी वजह से शायद मुझे वो रिकॉर्डिंग और स्टूडियो वाला माहौल बहुत पसंद था. एंड यस, माय डैड इज स्टिल वर्किंग. अभी 2 दिन पहले वो US के लिए निकले हैं विद उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू. कलरफुल 90s वर्ल्ड टूर कर रहे हैं. यस, माय ग्रैंडफादर, जिनकी वजह से म्यूजिक हमारे पूरे खानदान में पहुंचा है. सो अनफॉर्चुनेटली मैं उनको मिल नहीं पाया हूं, बट मुझे ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ भी मैं गा पा रहा हूँ वो उनकी बदौलत है. एंड वो एक ब्लेसिंग के तौर पर मुझे मिली है, या मेरे फैमिली में सबको मिली. वो 16 साल के थे जब उन्होंने पहली फिल्म की थी वी शांताराम सर के साथ में. बहुत सारी माइथोलॉजिकल फिल्म्स उन्होंने की, और बहुत बड़े बड़े लेजेंड लोग के साथ उन्होंने काम किया, और वो जाने जाते थे अपने हारमोनियम प्लेइंग स्किल्स की वजह से. अभी हमारे पास अब भगवान की दया से कुछ चीज़ें हैं जो उनकी संभाल के रखी हुई हैं, जो हम लोग सुनते रहते हैं.
ओह माय गॉड, फैंटास्टिक. दिस वाज लाइक टुक अस बैक इन दैट नॉस्टैल्जिया. अमेजिंग. आपने प्रॉपर क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली या फिर फैमिली में ही, यू नो?
दोनों ही चीज़ें हैं. मतलब क्लासिकल म्यूजिक मुझसे बैठ कर सीखा नहीं गया. मैं बहुत ही मतलब एक जगह बैठ नहीं सकता. स्कूल में भी प्रेयर के टाइम पे मैं हिलता डुलता रहता था. सो आई डोंट नो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई मस्ट से दिस, क्लासिकल म्यूजिक, अरिजीत सिंह ने कहा था क्लासिकल म्यूजिक अपनी नॉलेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम उसको डे टू डे लाइफ में गाते नहीं हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर उसको आपके अंदर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो मेरे लिए सबसे पहले बॉर्न इनटू अ म्यूजिकल फैमिली हेल्प्ड, कि मुझे वो गिफ्ट मिला जो भी मैं थोड़ा बहुत समझ पाता हूँ राग के बारे में, या अपने आप ही मुझे अगर नोट्स मिल जाते हैं कि ये इस दायरे के अंदर गाने तो मैं गा सकता हूँ. ऐसे ही मैंने अपना क्लासिकल सीखा है, और वैसे ही मैं बड़े लोगों को उनके ऑडियोज़, उनके वीडियोज़ सुन सुन के कोशिश करता हूँ उनको इमिटेट करने की, और ऐसे ही मैं अपने क्लासिकल को सीखता हूँ. मतलब मुझे ऐसे, अगर आप बोलेंगे कि आप वेल ट्रेन क्लासिकल सिंगर हैं तो नहीं, पर मैं एक लर्निंग इन प्रोसेस सीखता हुआ क्लासिकल सिंगर.
सुपर्ब, लाइक दिस इज ट्रूली अमेजिंग. क्योंकि जब भी आप दिव्य कुमार के सॉन्ग्स को सुनेंगे तो आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडियन क्लासिकल बेस सुनाई देगा. फिर वो मस्ती भरे गाने हैं या फिर लाइक यू नो सोलफुल सॉन्ग्स हैं, राइट फ्रॉम हल्का हल्का सुरूर या फिर नचो सारे जी फाड़ के, कंपोज्ड बाय सचिन जिगर. आई थिंक दैट इज वन ऑफ योर बेस्ट सॉन्ग्स, बिकॉज उसमें आपने इतना खुल के गाया है, और यू नो यू हैव स्टिल गॉट दैट क्लासिकल टच इन इट.
आई थिंक दैट आइडिया वाज कि पार्टी सॉन्ग है और उसमें ऐसी आवाज को गवाना, मतलब ऑब्वियसली हमेशा आपको लगता है कि पार्टी सॉन्ग है तो एक ऐसी यू नो स्वैग वाली वॉइस होती है. बट बिकॉज द कास्ट वॉज गोविंदा, मतलब आफ्टर 90s के बाद में एक बहुत बड़ा डांस सॉन्ग उनका आ रहा था, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो मेरे लक मेरे फेवर में थी. और पार्टी सॉन्ग होना चाहिए लेकिन आवाज़ ऐसी होनी चाहिए थोड़ी सी रस्टिक और फोकिश होनी चाहिए, और आई थिंक दैट एक बहुत बड़ा क्लिक था उस गाने के लिए.
एंड इट वाज अ सरप्राइज, इट वाज लाइक ओके दिव्य कुमार इज द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग. एंड सचिन जिगर, दे ऑलवेज लाइक टू एक्सपेरिमेंट.
ऑफ कोर्स, उन्होंने जितना वॉइस, मतलब आज हम बोलते हैं कि सिंगर बनना इजी है बिकॉज वॉइस प्रोसेसिंग और वॉइस मॉड्यूलेटिंग और वॉइस मेलोडाइन करना वो उस गाने के लिए ज़रूरी था. उसमें बहुत सारा उन्होंने खेला है उस वॉइस के साथ में, और गाते हुए जितना मज़ा आया है, हमने बहुत सारे R&Ds किए थे. अमेजिंग टाइम था जब हमने वो गाना क्रिएट किया था.
बट ऑल्सो बिकॉज द सॉन्ग इज नॉट ईजी वैन यू लिसन टू दैट सॉन्ग, बिकॉज वो कंटिन्यूस ब्रेथलेस स्टाइल में गाना है.
सिंगिंग इट लाइव इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज आने वाला है गाने का हुक, 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 वो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर है. बट यू नो वो जब आप एनर्जी में होते हो तो आप गा लेते हो. सो मुझे बड़ा मजा आता है उसको लाइव.
वील टॉक अबाउट द सॉन्ग दैट रियली ब्रॉट यू इनटू लाइमलाइट वाज द बदलापुर जी करदा सॉन्ग.
यस.
सो व्हाट आर द मेमोरीज दैट यू हैव? एंड
मेमोरीज बहुत भयंकर है. आई मीन देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज असिस्टिंग सचिन जिगर एज अ म्यूजिक प्रोग्रामर, और हम लोग हैप्पी एंडिंग के लिए काम कर रहे थे जी फाड़ के, जिस फिल्म का गाना है, और साथ ही साथ बदलापुर वाज इन प्रोसेस और उसका कोई भी गाना तैयार नहीं हुआ था. सो एक रात डीनो सर ने, दिनेश विजन जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने फ़ोन करके बोला कि मैं आ रहा हूँ और मुझे आज बदलापुर का गाना चाहिए, और मुझे ऐसा गाना चाहिए जो सबको हिला के रखते. एंड कोई गाना था नहीं एंड यू नो सडनली
दैट प्रेशर वाज देयर.
उस प्रेशर में इन्होंने पता नहीं कहाँ से वो गिटार बजा के रिफ निकाल के ये सब बना. मुझे सचिन ने बुला आ जाए दो लाइन का ये कर वो कर ये कर ऐसे करके कहीं ना कहीं से वो गाना रेडी हुआ. जी करदा चिल्ला रहे थे हम लोग. एंड डीनो सर आए और उन्होंने गाना सुना. बोलते हैं कि इसमें ऐसे वर्ड्स होने चाहिए, थोड़ा एंगर होना चाहिए, ये होना चाहिए. मतलब एक बहुत ही प्रेशर सिचुएशन में ये गाना बना और बहुत ही कमाल का बना. एंड इसके बाद में थोड़ा सा उसका जो मुखड़ा अगर जो बोलते हैं उसको वो बनने के बाद डीनो सर ने वरुण को मैसेज किया कि तेरा गाना मिल गया. वो रात को 3 बजे सुनने के लिए आए. तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसीलिए था कि यू नो देवर टॉक्स के इसके लिए एक नई आवाज़ ढूंढेंगे, बहुत ही यू नो एकदम रॉ आवाज़ ढूंढेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. तो मैंने उस गुस्से में गाया कि नई आवाज़ ढूंढेंगे क्यों, क्योंकि मैं बैठा हूँ.
वो गुस्सा दिख रहा है, वो गुस्सा दिख रहा है.
मैंने उस गुस्से में गाया कि कोई दूसरा सिंगर कैसे गाएगा, ये तो मैं हूँ.
I think this is an amazing attitude to have that you put in your best.
Yes, तो कहीं ना कहीं वो एंगर जो मेरे अंदर आया
कोई
और सिंगर के
साथ. It's amazing.
तो यस, फिर थोड़े टाइम जैसे जैसे गाना प्रोसेस होता गया तो डीनो सर ने आगे बोला तूने मुझे टेंशन में डाल दिया, तू मतलब कोई और आवाज़ समझ में नहीं आ रही तो टेंशन मत ले, तू ही गाएगा. मतलब अरे यस दैट्स हाउ द सॉन्ग. मतलब वरुण ने जब पहली बार सुना और वो स्टूडियो में आए और ही कुडंट बिलीव कि ये मैंने गाया, बिकॉज आई वाज एन असिस्टेंट और मैं ऐसे ही साइड में बैठा हुआ था. एंड सचिन ने बोला कि ये दिव्या ने गाया है और तब उसने मुझे गले लगाया. एंड ही रियली पुश दैट सॉन्ग. मतलब वरुण एक अच्छे एक्टर हैं, वो बहुत दूर की बात है, बट ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन और म्यूज़िक को लेकर वो बहुत यू नो सपोर्टिव हैं. मुझे उन्होंने सिटी टूर्स कराए, साथ में लेके गए और वो गाने को प्रमोट किया. सो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं और इस गाने के पीछे जितना पॉजिटिव एनर्जी लगा था वो सारा यू नो वापस मिला.
Wow, amazing. Can we please have
Challi kar de sina mera, challi kar de sina mera, challi kar de sina mera, daag de sari goliyan ni aj mera ji kar da mar janeya, aj mera ji kar da mar janeya, ni mera ji kar da mar janeya, aj mera ji kar da. मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, हंसते हंसते मिट जाने यानी मेरा जी कर दा मर जाने, अज मेरा जी कर दा मर जाने, मेरा जी कर दा मर जाने, अज मेरा जी कर दा. थैंक यू.
थैंक यू. थैंक यू दिव्य कुमार. बताएं हमारे लिसनर्स को कि कौन से आर्टिस्ट ने आपको हमेशा इंस्पायर किया
म्यूज़िक के टूवर्ड्स इंक्लाइन करना. मतलब मैं जब छोटा था तब म्यूज़िक सुनता था तो मुझे जतिन ललित का म्यूज़िक बहुत यू नो बहुत ही अपना लगता था. और बिकॉज मैं शाहरुख खान का फ़ैन हूँ और हमेशा रहूँगा, तो उनके गाने उन्होंने बहुत बनाए थे. और कभी या कभी ना एक ऐसा एल्बम था जो मतलब मैं घंटों घंटों सुनता रहता था और वो गाने इतने मुझे आज भी अगर आप बजा दोगे तो इतना नॉस्टैल्जिया में चला जाता हूँ. तो इंटरेस्ट जो मुझे म्यूज़िक सुनने का जो आया वो इनकी वजह से आया. और उसके बाद मैं छोटा था, मैं जब शोज़ करता था कल्याण जी आनंद जी सर के साथ में मैंने बहुत शोज़ किए, तो उस टाइम में मैं कवालियाँ गाता था और बहुत ऐसे बड़े बड़े गाने गाता था. मेरी आवाज़ शायद उस टोन की थी और उस तरह के गाने में गाता था. उस टाइम पर बॉलीवुड में ऐसी आवाज़ें नहीं थी, सारी 70 mm उदित जी और सोनू जी और इनकी आवाज़ें थी. तो अचानक में सूफीज़म बॉलीवुड में आया जब नुसरत साहब ने बॉलीवुड में म्यूज़िक देना शुरू किया और उनके कुछ गाने उनकी कवालियाँ पूरे वर्ल्ड में फेमस होने लगी और उनके गाने बॉलीवुड में इंस्पायर होके आने लगे. तो उनका गाना सुन के मुझे हमेशा लगता था, बट नुसरत साहब एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो कहीं पर भी गाते थे ऐसा लगता था एक मीठी आवाज़ है और वो मुझे हमेशा टच करती थी. और मैं उनके गाने मैंने बहुत सुने और मैंने बहुत वीडियोस देखे थे उस टाइम पे उनके, और उनकी गायकी सुन के मुझे बड़ा सुकून मिलता था. एंड देन सुखी पाजी वहाँ बॉलीवुड में आए, कैलाश के सर, तो ये आवाज़ें जब आने लगी तब मेरे को भी कॉन्फिडेंस आने लगा कि यू नो कहीं ना कहीं अब मेरे को भी थोड़ा चांस मिलेगा. तो इन लोगों को सुन सुन कर मैं बड़ा हूँ. और ऑफकोर्स उदित जी, सोनू जी, कुमार सानू, इन सबको सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, बट जिसने मुझे टच किया वो ये आवाजें थी.
आई नो आई रिमेम्बर ड्यूरिंग दिल धड़कने दो एंड आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट आपकी आवाज़ सुनते ही हमें समझ में आ जाता है कि यू हैव बीन अ बिग फैन ऑफ सुखविंदर सिंह एंड व्हेन यू गॉट टू सिंग द सॉन्ग या
आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो बोलते हैं ना आप किसी को फॉलो करते हो किसी को एडमायर करते हो
तो कनेक्शन
कहीं ना कहीं बनता है. सो लखनऊ सेंट्रल वॉज मतलब मुझे पता नहीं मेरे को कुछ गाने ऐसे आप सोचते हो ना कि काश ये मैंने गाया होता उसमें से कहाँ कहाँ भी एक था परदेसी फ्रॉम देवडी जो मुझे लगता था कि काश ये मैंने गाया था बट लखनऊ सेंट्रल आया और कहाँ कहाँ वापस रिक्रिएट हुआ और
उड़ जाए फुर करके रब ने दी है उड़ान परों में भर भर के मैं उड़ना खून ये खोले आज मेरा दिल बोले कावा 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 कावा.
थैंक यू एंड मतलब मी बीइंग अगेंस्ट द रीमेक्स और ये सारी चीज़ें बट वो चीज़ को उस गाने को ज़्यादा छेड़खानी नहीं की गई और उसमें कोई रैप नहीं डाला गया उसमें कुछ बस सिचुएशन के हिसाब से बीइंग अ फोक सॉन्ग उसको हमने वापस एक बॉलीवुड की फिल्म में डाला. तो आई थिंक मुझे ये मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे यू नो एक ट्रिब्यूट के तौर पे मैंने कावा कावा गाया
और वो झलकता भी है क्योंकि you know that it was well received.
Yes, yeah, लोग बोलते थे कि कहीं ना कहीं मैं उनकी तरह साउंड करता हूँ तो ये चीज भी ये भ्रम भी टूटा जब हम दोनों का डुएट आया इसक बाजी.
Absolutely, that was like your dream come true.
Of course, मतलब मैं बैठा था एक दिन मुझे पता चला कि मेरे पार्ट्स के बाद में सुखी जी आके गाने वाले हैं तो मैं उधर चुपचाप एक कोने में बैठ के बस उनको देख रहा था कि वो कैसे गाते हैं.
I think boy your hands shivering like
of course,
अंदर से दिल धक धक
मैं तो हिल ही रहा था. मैं साइड में खड़ा हूँ मेरे को वो यशराज स्टूडियो में साइड में एक जगह होती है वहीं पे मैं हमेशा खड़ा रहता आज भी मैं ना मैं बैठ नहीं सकता तो मैं वहाँ पे साइड में खड़ा होता हूँ. मैं खाली बस उनको देख रहा था वो बातें कर रहे थे जोक्स कर रहे थे मस्ती कर रहे थे और फिर जब उन्होंने माइक पे जाके गाया मुझे पता था कि मेरा गाया हुआ तो ठीक है अब ये जो गाना जिस लेवल पे पहुँचने वाला है वो अब पहुँचेगा और वही हुआ. और बहुत ही मतलब डिवाइन फीलिंग थी जब वो गाना फाइनली हमने साथ में बैठ के सुना एंड सिंगिंग फॉर अजय अतुल सर फॉर द फर्स्ट टाइम इन बॉलीवुड मेरे लिए तो बहुत बड़ा यू नो ऐसे बोलते हैं सारे देवी देवता एक साथ आकर आशीर्वाद दे रहे थे.
एब्सोल्युटली कैन वी प्लीज रिक्वेस्ट यू टू सिंग अ फ्यू लाइंस ऑफ दिस सॉन्ग.
यस
उसके नैना नीट दारू रे गजब चढ़ जाए रे हमरी तब से है वो जग में आशिक आए रे कसम से जियरा चखना चूर है इसक बाजी में कसम से जियरा चखना चूर है इसक बाजी से.
What was Sukhvinder Paji's reaction and what did he say?
मैं उस reaction के लिए wait नहीं किया मैंने बस उनको सुना और मैं वहाँ से भाग गया. मुझे आई मीन जब मैं लास्ट वाला मेरा एक पार्ट बाकी था जो स्टार्टिंग में एक बहुत हाई आलाप है वो गाने में बहुत स्ट्रगल कर रहा था एंड अजय सर वॉज वेरी पेशेंट और प्यार से मुझे रिकॉर्ड करवा रहे थे और पूरा गाना ख़त्म होने के बाद में वी वर रिकॉर्डिंग दोज लाइन्स अचानक में सुखी पाजी की एंट्री हो गई और मैं और नर्वस हो गया बट कहीं ना कहीं जो एनर्जी मिली मुझे और उसके बाद में मैंने वो नोट हिट कर दिया और उसके वो रिकॉर्ड हो गया और फिर मैं बाहर जाके चैन की सांस ली और मैंने बोला अब मैं देखूँगा कि जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो कैसे यू नो इस गाने को और आगे लेके जाते हैं. मैं बस वहाँ पे था जब तक उन्होंने रिकॉर्ड किया उसके बाद में बट जो ऑडियंस ने प्यार दिया वो बहुत बड़ा था मेरे लिए.
एज एन एस्पायरिंग सिंगर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट तो आप उनके लिए कोई ऐसी टिप्स दे सकते हैं कि व्हेन यू यूज्ड टू लिसन टू नुसरत फतेह अली खान साहब या फिर सुखविंदर सिंह किस तरह से आप ग्रैस्प करते थे उनकी सिंगिंग स्टाइल और किस तरह से आप उनके साथ कनेक्ट होके यू नो
एक अच्छा आर्टिस्ट यू नो एक बहुत अच्छा मिमिक होता है ऐसा मैंने सुना था और ये बहुत फैक्ट बात है. आप बड़े बड़े सिंगर्स देख लीजिए सोनू जी सुनिधि चौहान
गुड एक्टर्स
दे आर गुड एक्टर्स दे कैरेक्टर्स जैसे सिंगर का काम है कैरेक्टर
के अंदर घुस जाना
कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए गाना. सो ये बहुत कमाल की मतलब ये लर्निंग है जो लोगों को ऐसा लगता है कि यार अपन इसकी कॉपी करेंगे तो वैसा साउंड करेंगे, बट ऐसा नहीं है. मैं ट्राई करता था जैसे वो हरकतें ले रहे हैं, जैसे वो छोटी छोटी चीज़ें गा रहे हैं, वो मैं कंटिन्यूसली गाता रहता हूँ. दिन भर में एक ही रट लगाए रहता था और घर वाले परेशान होते थे, तो सुबह से यही गा रहा है, पका रहा है, क्या कर रहा है. पर वो मेरे लिए लर्निंग होती थी और बस कोशिश
ही होती थी राइट नोट कि मुझे वैसा ही
मुझे वो खमक चाहिए या वो हरकत मुझे गानी है या वो चीज़ जो उन्होंने गाई है वो मुझे रेप्लिकेट करनी. तो रेप्लिकेशन में मैं यू नो बड़ा ही माहिर था, तो मुझे वो अच्छा लगता था कि मैं उनका गाना सुनूं और मैं वैसे ही गाऊं. मुझे याद है सुखविंदर सिंह जी की एक एल्बम आई थी
नशा,
वो नशा ही नशा है, वो जितना वो होल्ड करते थे ब्रेथ उनके साथ साथ में मैं गाता था. और वो मुझे पता भी नहीं था कि मैं ट्रेन हो रहा था, मैं बस गाते रहता था. और जब भी गाड़ी में पापा की एक फियार थी उसमें कैसेट होती थी, वो लगा के हम जहाँ भी जाते थे वो सुनता रहता था. तो मेरे लिए वो लर्निंग थी. और बस यही है कि उनको इमिटेट करो, उनकी गायकी को कॉपी करो, लेकिन उनकी आवाज़ को कॉपी ना करो तो बेटर है. क्योंकि जब तक ओरिजिनल सिंगर हैं तब तक आप कॉपी को कोई नहीं गवाएगा. ये बहुत सारे सिंगर्स के साथ में ऐसा हुआ है, बट कहीं ना कहीं अलग पहचान बनानी बहुत ज़रूरी होती है. तो वो मुझे पता नहीं अपने आप ही मैंने अपनी आवाज़ को और ख़राब कर लिया थोड़ा सा ताकि मैं अलग साउंड करूँ. बट यस, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी को फॉलो करो वो अच्छी बात है, बट किसी को कॉपी करो ये आपके लिए अच्छा नहीं, फ्यूचर के लिए.
और इंडस्ट्री में भी आप जब आए तो आपने ये सोचा होगा, ये देखा होगा कि जिस तरह से 90s वर यू नो रूल्ड बाय सच बिग नेम्स, तो आज के दौर में भी यू नो देयर आर सो मेनी अमेजिंग सिंगर्स और आपकी आवाज़ एकदम से अलग है, आपकी सिंगिंग स्टाइल अलग है. बट आई थिंक विथ योर कॉन्फिडेंस एंड आई थिंक पॉजिटिव एनर्जी, द पॉजिटिव वाइब दैट यू हैव, वो सब बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है.
ऑफकोर्स आई थिंक अच्छा आर्टिस्ट होने के साथ में एक वाइब्स मैटर करती है बहुत ज़्यादा. मतलब मुझे भी कभी कभी ऐसी जगह काम करने में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है, कहीं पे एक आदमी ऐसा आ जाता है जो यू नो एक नेगेटिव वाइब्स के साथ आता है. पर मेरा काम हमेशा ही होता है कि जो मुझे काम दिया गया है वो उसको मैं 100% तरीके से करके वहाँ से बस काम करूँ और निकल जाऊँ.
टू कीप द प्योरिटी ऑफ द सोल
ऑफकोर्स. तो यू जस्ट हैव टू बी 100% विथ योर वर्क. बाकी सारी चीज़ें जो बैगेज आता है इंडस्ट्री में के सिंगर के अलावा और क्या क्या कर सकना है, ये वो सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके जो आपके सामने पेपर है एग्ज़ाम पेपर, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें. और मैं हमेशा यही करता हूँ, मैं पहले जाके अपने आप को गाने से प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ कि यार लोग जिसके लिए मुझे बुलाया गया वो उनको वो मिल जाए. ऐसा बाहर से लोगों को लगता होगा ये इंडस्ट्री ऐसी है ऐसी है, बट यहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी सक्सेसफुल हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे इंसान है जो जिनको ऊपर वाले ने ये गिफ्ट दिया है कि वो आज इतने बड़े मकाम पर पहुँचे.
एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक one thing to keep in mind is that to keep your originality.
Yes.
Like you know, कहीं भी आपको किसी के जैसा या फिर जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करने के चक्कर में डोंट लूज योर ओरिजिनल आइडेंटिटी. लाइक यू नो यू हैव नॉट ट्राइड, लाइक वेन यू गॉट द सॉन्ग हल्का हल्का सुरूर फॉर एग्जाम्पल, अ फिल्म लाइक फन्ने खान एंड लाइक यू नो राजकुमार राव इज देयर, ऐश्वर्या इज देयर इन द फिल्म.
आइडिया वॉज कुछ और आइडिया था, बट कहीं ना कहीं अमित सर वॉज नॉट हैप्पी और फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये गाना है इसको कैसे हम लोग क्रैक करें. एंड आई जस्ट वेंट एंड सैंग. मतलब ऑफकोर्स बीइंग अ नुसरत फतेह अली खान सॉन्ग, मैं नेचुरली गा रहा था उसको और अमित सर वाज लाइक यार ये तो बहुत इजी था. मतलब फॉर मी इट वाज इजी बिकॉज वो गाना मैं सुनते हुए आया हूँ और आई जस्ट वेंट एंड आई जस्ट सैंग इट लाइक जैसे मैं नॉर्मली गाता हूँ. उसमें कुछ एफर्ट या ये सिचुएशन ये एक्टर ये कुछ था ही नहीं. मतलब आप सोचते कि किसी और आवाज़ के साथ में इसको थोड़ा यू नो थोड़ा सा रोमांटिक बना देते या जो भी है कुछ गिमिक करने के, लेकिन उसी गाने को जैसा वो है वैसा गा दिया और वो ख़त्म हो गई बात. तो
दैट
वो काम करेगा बिकॉज दो अदर पार्ट ऑफ द सॉन्ग जो सुनिधि मैम ने गाया है वो इतना ब्यूटिफुली कम्पोज है, तो वो उसके साथ में वो वैसे का इंटैक्ट आना अपने आप में एक आइसिंग ऑन द केक.
या इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट यू हैव रियली हैड सो मच फन सिंगिंग.
ये जो हल्का हल्का सुरूर है तेरी ही नजर का कुसूर है, मैंने खुद को तुझ पे लुटा दिया, तेरा होके खुद को मिटा दिया, तेरी राह ने तेरी चाह ने तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया।
मैंने उसको पुराना वाला भी मिक्स कर दिया।
वेरी नाइस, अमेजिंग। अमित त्रिवेदी के साथ काम करके क्या क्या आपने सीखा है?
सीखा तो मतलब मेरे लिए तो ही इज द वन जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ। एंड उन्होंने पता नहीं कहाँ से ढूंढ के निकाला, और वो एक टाइम था जब मैं यशराज स्टूडियो में पहली बार गया और उनसे मैं पहली बार मिला। मुझे हमेशा, मैंने उनको भी बोला है, मुझे हमेशा लगता था कि कोई 40-50 साल का आदमी है, क्योंकि उनका म्यूज़िक सुन के ऐसे ही लगता है कि कुछ बहुत ही तिकड़म आदमी है, कहाँ से क्या ढूंढ के लेकर आए, क्या आवाज़ आ रही है, कौन सी साउंड आ रही है। तो मुझे लगा कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत बड़ा आदमी होगा जो
सीनियर
एकदम। और मैं वहाँ पे जाके देख रहा हूँ तो सोफे के अंदर इतने छोटे से आदमी बैठे थे, और पहली बार मिला उनसे। और उसके बाद में एक बहुत लंबी जर्नी हमने साथ में यू नो की है, मैंने बहुत सारे लाइव शोज किए हैं। और
आई सॉ दिस क्लिप, आई थिंक इट्स फ्रॉम द आईफा वेयर यू परफॉर्मड विद अमित त्रिवेदी।
यस,
या दैट वाज लाइक रियली फैंटास्टिक।
मतलब वो एक एग्जांपल है कि आप अपने काम से कैसे जीत सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम के। यू नो, कहीं वो दिखते नहीं हैं या उनके कोई इंटरव्यूज या ये, बस उनका कोई काम आता है और लोगों को पता चलता है कि अमित त्रिवेदी का म्यूजिक आया, बस वही काफ़ी है। आई थिंक उनको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो
Absolutely
उनका
right.
जो उन्होंने अपना नाम बनाया है, इतने बड़े 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 म्यूज़िक डायरेक्टर्स, इतना बॉलीवुड यू नो लार्जर देन लाइफ हमारे म्यूज़िक होते थे, उसमें कहीं ना कहीं अपनी एक अपना एक साउंड बना,
साउंड
मतलब आप सुन के बोल सकते हो कि ये अमित त्रिवेदी है।
और सच अ न्यू साउंड दैट ही ब्रॉट,
तो मेरे ख्याल से वही उनकी जीत है कि आज अमित त्रिवेदी को बस उनका नाम सुन के, उनका काम सुन के लोग पागल हो जाते हैं। तो वो दिखना या इंटरव्यू और ये
तो ही इज नॉट एट ऑल। या एब्सोल्युटली राइट।
मेरे लिए यही चीज सीखने के लिए थी कि आप कितना हम्बल हो सके, और उतना हम्बल होके जितना आप ऊपर जाओ उतना आप हम्बल होते जाओ, और बस अपने काम से जीतो।
सेम गोज विद शंकर हसन लॉय, विद होम यू डिड दिस फैंटास्टिक सॉन्ग इन भाग मिल्का भाग।
हवन करेंगे भी एक ऐसा गाना था, मतलब मुझे पता ही नहीं था, मेरी आवाज़ ख़राब थी, फिर मैंने गाना गाया, मतलब ऐसे वो भी ऐसे लग रहा था कि शंकर हसन लॉय मतलब डिसिप्लिन, चुपचाप बैठे रहो, ये गाना दिया है ख़राब गाया तो डांट पड़ेगी, ये होगा। और वो तो हमसे भी छोटे बच्चे की तरह काम करते हैं,
मतलब एकदम मस्ती वाले
ऐसे, मतलब माहौल ऐसा रहता है कि मतलब ऐसे मस्ती हो रही है हर चीज़ में। और बट देन जब गाना आप गाते हो तो सामने शंकर जी खड़े हैं, तो आप कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज वो गाइड इतना अच्छे से करते हैं, और उनको पता है कि एक सिंगर, क्योंकि वो जो आपसे गवाना चाहते हैं वो खुद गा के बता सकते हैं। मतलब बहुत सारे कंपोजर्स ऐसे होते हैं जो नहीं बता सकते, बट ही इज़ द पर्सन जो आपको सीधा बोल सकते हैं कि ऐसे गा, तो आपका काम वैसे आसान।
लाइक अ गुरुजी, ही इज अ गुरुजी,
ही इज द मतलब शंकर भगवान है वो गाने के।
ब्यूटीफुल।
तो मुझे मतलब कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं यू नो एक बहुत ही ऐसी जगह पर आऊं जहां पे मैं नर्वस हूं। ऑफ कोर्स मैं हुआ था पहले, बट शंकर जी ने इतनी अच्छे से मुझे कूल डाउन किया, एंड एहसान और लॉय सर एकदम हमेशा एक स्माइल के साथ में बैठे रहे, तो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही कमाल का एटमॉस्फेयर था। अभी हमने वापस कुछ रिकॉर्ड किया है, वो पुल ही के वो आपके सामने आए, बट बहुत टाइम बाद मिलके भी ये वही 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 एटमॉस्फेयर, कुछ भी चेंजेस नहीं है इतने सालों में, और बहुत ही कमाल का मज़ा आता है उनके साथ।
आई कैन ऑल्सो से दैट म्यूजिक कंपोजर्स लाइक शंकर एहसान लॉय, अमित त्रिवेदी, सचिन जिगर, दे ऑल हैव एक्सपेरिमेंटेड विथ योर वॉइस एंड एक्सप्लॉइटेड you know the singing style in the best way. Like you know, to give you a song like in dil dhadakne do
phir bhi ye zindagi,
phir bhi ye zindagi,
I think wo char line ne mujhe mere pure zindagi ki singing sikhayi hai. Main ek bahut hi chanchal aisa nahi hu, harkat aise fast aur ye
powerful singing
zor se ye wahan par aake mujhe rok diya ke bhai sun, tu gaata hai acha gaata hai, but jo aap sunana cha rahe ho na usko acche se sunao. तो वो बहुत ही मैटर किया, वो चार लाइन ने मुझे रेल में एक सुलझा हुआ और एक ठहराव वाला सिंगर बनाया, और मैंने बहुत सारे गाने गाए और बहुत सारे हिट गाने गाए, बट ये जो चार लाइन थी उसने मुझे मेरी सिंगिंग के बारे में बताया
एक कि रास्ता ऐसे दिखाया
ऐसे तो आगे बढ़ सकता है.
ब्यूटीफुल, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स इन दिल धड़कने दो. लेट्स जस्ट हैव अ फ्यू लाइंस ऑफ दैट सॉन्ग.
उलझी हुई ये डोरिया, उलझिए हुए ये डोरिया, सुलझा ले दिल की तू सुने अगर, दिल सच्चा है दिल वाले.
दिस वॉज माई पार्ट एंड इसके बाद में द सॉन्ग
गोज
एंड ये चार लाइन थी जो मुझे मेरी लाइफ की सिंगिंग जिसने सिखाई है.
Wow, beautiful. Let's talk about what you spoke in the beginning, your love for folk music. Let's talk about, you know, the folk influences or
I think folk के ऊपर हम चल रहे हैं. बॉलीवुड में जितने भी आप गाने सुनेंगे, जो पंजाब का जो भी यहाँ पर मतलब जो छाया हुआ है खुमार, वो folk के ऊपर बेस्ड है. और इससे बड़ा richness music में नहीं है कि जिस कंट्री के पास फोक म्यूज़िक है उनका म्यूज़िक बहुत 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 गहरा है. हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस के फोक हैं, गुजराती से लेके मराठी से लेके
राजस्थान
से लेके. तो मतलब जितना अपन स्टडी करने जाएंगे उतना ही आपको कुछ नया मिलेगा उसमें. तो आई बीइंग ए राजस्थानी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैं अपने जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में करने की सोच रहा हूँ या करना चाहता हूँ उसमें कैसे मैं फोक म्यूज़िक को आकर लिख रहा हूँ और उस वाले जोन को थोड़ा सा टच करें. तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब भी कोई फोक आर्टिस्ट गा रहा होता है. और जब हम राजस्थान घूमने जाते हैं या गुजरात जाते हैं, कोई फोक चीज़ें सुनते हैं तो इंस्टेंट वो आपके कानों में यू नो गूंजने लगती है और आप उसको गुनगुनाने लगते हो. आई थिंक उससे रिचनेस, उससे रिच और कोई फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है ही नहीं.
Wow. Can we please have you sing some folk song?
There's this one mand which we call in Rajasthan, jo mere dada ji ne gayi hai aur unhone compose kiya.
Mara hanjla re maru aap re wo niratalri, mara hanjla re maru आप रे वो नीरा तलड़ी, हो रे वो नीरा तलड़ी, हो रे वो नीरा तलड़ी, मारा अंजला रे मारू मारा, मिठोड़ा रे मारू मारा, हो अछोड़ा रे मारू आपा कर श्याम निडेरी, बात रे मारा हंजला रे मारू आप रे वो नीरा तलरी.
वाओ,
दिस इज वन ऑफ द मांड्स विच उनकी जो गाए हुए हमारे पास हैं. तो मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी गाने की उनको.
और कितनी अच्छी ट्रेनिंग भी हो जाती है व्हेन यू सिंग, व्हेन यू ट्राई टू सिंग अ फोक सॉन्ग, क्योंकि वो यहाँ वहाँ एकदम ऊपर नीचे, इट इज नॉट योर सिंपल.
बिल्कुल, अभी बीच में ही बुआ जो मेरी है उन्होंने बताया था कि लता जी की एक चला वाही देश एक एल्बम है, हृदयनाथ मंगेशकर जी ने कंपोज की. वो पूरी एल्बम सुन के ऐसा लगता है कि एक सिंगर को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं. अगर आप उसका एक एक गाना गाने की कोशिश भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिंगिंग क्या होती है.
Can you tell us the name again?
It's called चला वाही देश. इट्स अ मराठी एंड उसमें बहुत सारे मतलब मारवाड़ी का भी एक गाना है उसमें.
wow.
मराठी भी है उसमें, बहुत सारे अलग अलग तरीके के गाने. और मतलब हम सरस्वती माँ उनको बोलते हैं वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं. वो अगर आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि एक सिंगर को बनने के लिए अगर आपने ये चीज़ सुन ली तो आप कुछ भी यू नो गा सकते हो, या अगर उन्होंने कोशिश कर ली वो गाने की. तो मैं आजकल उस पर ट्रिप कर रहा हूँ.
wow.
जो आजकल लोग बोलते ट्रिप कर रहे हैं, तो आई एम ट्रिपिंग ऑन चला वाही देश.
ओह लवली, आई थिंक वी शुड डेफिनेटली चेक इट आउट. दिव्या, यू हैव संग इन वेरियस लैंग्वेजेस. या एंड आई शुड डेफिनेटली मेंशन योर सॉन्ग इन द गुजराती फिल्म दैट वन द नेशनल फिल्म अवार्ड, दैट योर रॉन्ग साइड राजू.
रॉन्ग साइड राजू,
दैट वाज अगेन सचिन जिगर. सो टेल मी अबाउट दैट.
इतना प्यारा गरबा है, इतना प्यारा रास गरबा है. गाते ही मतलब गुजरात में तो वो पागल हो जाते हैं. इट्स लाइक उनके लिए सनबर्न का कोई बड़ा
गुड वन.
गुजराती लोग यहाँ खुश हो रहे हैं.
सनबर्न ऑफ गुजरात.
वो गाते हुए मजा आया और उसमें मैंने ड्रम्स भी बजाए हैं. तो या ये असिस्टेंट होने के कुछ फायदे होते हैं जो आप ले सकते हैं. तो ऐसे हम लोग जब गाना रिकॉर्ड होने वाला था उसके पहले रिदम चल रहा था तो मैं ड्रम पढ़ा था. मैंने भी वो जाके बजाया. तो आई एम ऑल्सो म्यूजिशियन इन दैट सॉन्ग. तो बड़ा ही मज़ा आया और बहुत ही अच्छे से एक वर्जन जो ट्रेलर वर्जन है जिसमें कीर्ति दान गढ़वी सर ने भी गाया
yes,
उसको
he's amazing.
फिल्म वर्जन है जो मेरी आवाज़ में था. सो गोरी राधा ने काड़ो कान गर्भे घूमे भोली भान. गोरी गोरी राधा ने काड़ो कान गर्भे घूमे भोली भान. राधा नु रूप छे कानूड़ानी प्रीत छे जगनी रीत नु सुखाम. राधा नु रूप छे तो कानूड़ानी प्रीत छे आँखों मांडी ने जुएगा. गोरी राधा ने काड़ो कान गर्भे घूमे भूली भान. थैंक यू.
बहुत ही कमाल का इसको रिस्पांस मिला है. एंड मतलब ऐसा मुझे बोला जाता है कि वो मेरा दूसरा घर है बट अब वो पहला घर हो गया ऐसा मुझे लगता है. बिकॉज इतना प्यार इतना रिस्पेक्ट उन्होंने मुझे दिया है. अगेन सचिन जिगर जो आपको पता ही है उनके साथ में मतलब मैंने असली म्यूज़िक मेकिंग प्रोसेस जो होता है वो सीखा है. मुझे ये जानना था कि अगर मैं सिंगर नहीं बन पाया भगवान ना करे तो मैं क्या करूँगा. तो मुझे ये चीज़ मुझे सीखनी थी क्योंकि मैं पापा के साथ में बचपन में रिकॉर्डिंग पे जाता था तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करता था कि इतने सारे लोग मिलकर म्यूज़िक प्ले कर रही हैं क्या हो रहा है. तो
प्रोसेस ऑफ
म्यूज़िक यस तो वो मुझे सीखना था. और आज जैसे कि आप जानते हैं कि एक स्टूडियो छोटे से अंदर सब कुछ हो जाता है तो वो मुझे सीखने की बहुत मतलब अंदर से वो होता था. सो आई गॉट लकी कि मैं प्रिया मेरी बचपन की दोस्त है उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद से हम साथ में.
या व्हेनेवर आई हैव मेट सचिन जिगर आई हैव ईदर स्पॉटेड यू देयर जैमिंग विद देम. एंड जिगर हैज ऑलवेज टोल्ड दैट यू नो हम लोग रात रात भर जैमिंग करते रहते हैं मैं दिव्य एंड ऑल. सो
मतलब अमेजिंग डेडलाइन होती थी और हम लोग प्लेस्टेशन खेल रहे होते थे. काट देना बाद में. नहीं बट हम लोग बहुत अच्छे से काम करते थे और टाइम पे काम करते थे पर साथ में मस्ती भी बहुत होती थी.
वाओ अमेजिंग. वी आर टॉकिंग अबाउट सचिन जिगर तो उनका एक सॉन्ग है सुन साथिया.
जी सुन साथिया के भी एक बहुत ही कमाल की स्टोरी है. तो ABCD जो फर्स्ट पार्ट था उसका एक बैकग्राउंड स्कोर था जो हमसे क्रैक नहीं हो पा रहा था. लॉरेन की एंट्री एक बैले से होती है और उसका म्यूजिक हमको करके रखना था. एंड सुबह रेमो सर उसको देखने आने वाले थे कि क्या म्यूजिक बनाए हमने और उनको कुछ हटके चाहिए था उसमें एक बैले म्यूजिक नहीं चाहिए था जो डांस चल रहा है कंटेम्प्रेरी और वो. तो हमसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो हम खाना खाने चले गए. हम खाना खा के आए हम फिर प्ले स्टेशन खेलने लग गए. और 4 बजे सुबह सचिन के दिमाग में कुछ घंटी बजी एंड देन ही सैट ऑन द पियानो. और उसके बाद हिस्ट्री है. उसके बाद में प्रिया से गाने लिखवाए और उसने गाया फिर मैं
सुन साथिया माहिया बरसा दे शिका की स्याहिया.
वाओ.
हमने एक उस्ताद सलामत अली खान साहब का एक वीडियो देख रहे थे रात को इंस्पायर होने के लिए. बहुत कमाल का इनका एक वीडियो है. तो हम देख रहे थे और वो कैसे गा रहे थे और सामने गुलाम अली साहब बैठे थे और उन सुन रहे थे. तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे मुझे आदत है इमिटेट करने की तो मैं हाँ ऐसे गा रहा था उनकी तरह और से आलाप आलाप कर रहा था. तो अचानक से सचिन ने कंपोज किया उसके बाद प्रिया ने गाया उसके बाद बोलता अब जो तो वो कर रहा था ना अब कर रही गाने में. तो मुझे बैठ के उसने आलाप गवाए बहुत सारे आलाप गा रहा हूँ मैं सरगम गा रहा हूँ ये कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें गा के उसको कल्मिनेट करके उसको तोड़ मरोड़ के एक 40-50 सेकेंड का एक म्यूज़िक बना जो सुन साथिया था. वो एंट्री जो लॉरेन की थी वो एक कमाल लग रही थी और मैं लग ही नहीं रहा था कि बैले म्यूज़िक होना ज़रूरी था. एक इंडियन गाना आके उसके ऊपर एक बहुत you know, Kamal ka scene ko ek enhance kar diya usne.
Yeah, that's what I was saying, that like, you know, in a film like ABCD, like contemporary music chahiye tha Remo sir ko, aur aapne
Hindi ek bahut hi pyara sa romantic gana usme banaya, usme tabla wabla bhi bajwaya tha. Aur subah Remo sir aake dekha aur he loved it, aur bas wo background score mein ABCD 1 mein chala gaya. Uske baad release hone ke baad mein audiences ne demand ki ki ye gana chahiye humko. बहुत मैसेजेस आते थे सचिन जेकर को कि सुन साथिया का पूरा वर्जन चाहिए, पूरा वर्जन चाहिए. तो ऑडियंस की डिमांड पर उसको सेकंड में एक गाने के तौर पे एक वापस उसका अंतरा कंपोज किया गया और उसको रिलीज किया.
अमेजिंग.
तो आई एम ग्लैड कि उस रात को मैं पागलपंती कर रहा था और वो गाने का हिस्सा मैं बन गया.
फॉर आवर लिसनर्स, कैन यू टेल अस कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए?
ध्यान में बस यही रखना चाहिए कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करते रहें. और बहुत भाग दौड़ मची हुई है अभी लोगों में, रियलिटी शोज देख लो या
सोशल मीडिया
से, हाँ, जल्द से जल्द स्टार बनना है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी फिल्म में बताया गया कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करो, सक्सेस अपने आप पीछे आती है. सो मेरे ख्याल से पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है आजकल, और वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है लोगों में. तो बस थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो, और अपना काम करते रहो, और तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ वापस यू नो गिफ्ट के तौर पर मिलती है. सो बी अ लिटिल पेशेंट एंड थिंग्स विल फॉलो.
वाओ. और मुझे भी ऐसा लगता है कि बाहरी या ऊपरी व्हाट यू कॉल सुपरफिशियल ना होके
अंदर के स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें, उसी से सब कुछ है. बाकी तो एक गाना गा के हिट होके कोई भी आके जा सकता है, तो बहुत सारे लोग आ भी रहे. बट यस, अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए.
थैंक यू सो मच. व्हाट इज योर क्रिएटिव डिसिप्लिन दिव्य कुमार?
डिसिप्लिन था ही नहीं लाइफ में. बस डिसिप्लिन ये है कि मैं जब काम पर जाता हूँ तब मैं सिर्फ काम करता हूँ. अगर मैं कहीं लेट भी पहुँच रहा होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो काम मुझे दिया गया उसको मैं फटाफट सीखूँ. वो एक ग्रास्पिंग पावर होती है इंसान की कि आप कितना अच्छे से सीख सकते हो. तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर्स आज बहुत स्ट्रेस में है, सबको बहुत सारा काम करना है, और उसके ऊपर सिंगर भी आके 2 घंटे लगाएगा तो मतलब वो और स्ट्रेस में है. तो मैं, मेरी कोशिश ये रहती कि मैं चलो, बिकॉज शंकर जी तो टाइम ही नहीं देते हैं, एक बार गाना सुना रिकॉर्ड, हाँ ओके सर रिकॉर्ड. फिर अंदर जाके आप अपने दिमाग में प्रिपेयर होना पड़ता है कि आपने सुन लिया है गाना और वो ट्यून क्या थी.
So you have to be really prepared.
Yes, and you have to be really sharp. Or मतलब laid back attitude तो चलेगा ही. बहुत fast है, of course industry में बहुत fast काम होता है, पर आपको अपना core इतना strong करना है कि जब आप काम के लिए जाओ और आपको कुछ मिला है या question paper मिलता है तो आप prepared हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़. तो मुझे जब कोई सिखाता है गाना, मैं कोशिश करता हूँ उसको जल्द से जल्द सीखने की. इवन द एक्सप्रेशंस या उसके जो लिरिक्स हैं, उसको पढ़ के लिख के क्या इसका मतलब है, क्या सिचुएशन है, वो भी समझ में आ जाती है. ऑफकोर्स जब आप सुनते हो एक लाइन के इसमें दर्द लिखा हुआ है, इसमें डांस लिखा हुआ है, इसमें रोना लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये इस जॉनर का सॉन्ग है.
Wow.
तो वो एक्सप्रेशंस फटाफट आप कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करते हो.
Lovely. Thank you so much. Let's talk about your latest song, that is the title track of Dabang 3.
Of course, Dabang का जो टाइटल ट्रैक है वो उन्होंने मुझसे गवाया है, और आई एम रियली ग्लैड कि मैं वापस सलमान सर की आवाज़ में, मतलब उनके लिए मैंने गाया है कोई गाना. तो आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि ये एल्बम बड़ा हो और वापस दबंग की एक लेगेसी यू नो चलती रहे.
हाउ वाज इट वर्किंग फॉर साजिद वाजिद?
इट्स वर्किंग वेरी गुड. आई थिंक this is a very emotional project for them, Sajid bhai, Wajid bhai, and for all the love for Wajid bhai, especially because he was not keeping well. So,
and how was it working with Sajid Wajid?
Sajid bhai and Wajid bhai ek bahut hi, you know, bade bhaiyon ki tarah ek bahut hi chilled out. Sajid bhai of course bahut hi matlab apne bidu type hain, and Wajid bhai being a mentor, bade mere papa aur unke papa ne bahut kaam kiya hai saath mein.
Yes.
To wo hamesha bolte rehte hain, to बहुत ही अच्छा लगता है उनके साथ में भी काम करते हुए. एंड
सो लेट्स हैव एक्सक्लूसिवली ऑन दिस पॉडकास्ट
मैं हूँ दबंग 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 चुलबुल 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 दबंग 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 दिस इज द न्यू एडिशन चुलबुल दबंग.
How are your gigs and live performances?
वो बचपन से बहुत किया है मैंने, तो वो मतलब ऐसा है ना कि जब आप घर में बैठ के काम कर रहे होते या स्टूडियो में काम कर रहे होते तो आपने बहुत, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सरकमफेरेंस बड़ा किया हुआ है, तो स्टेज पर जाके कोशिश करते हो उसको यू नो बर्न करने की. तो मेरे लिए वो 2 घंटा 3 घंटा स्टेज पर एक बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही यू नो जहाँ पर ऑडियंस के साथ करने का मौका मिलता है लाइव, तो बहुत ही मज़ा आता है. इवन अमित सर के साथ में मैंने पिछले 4 साल 5 साल से बहुत सारे शोज़ किए, बहुत सारे कॉलेजेस में किए हैं, बहुत सारे कॉपरेट्स किए हैं, तो बहुत ही अलग एनर्जी होती है. एंड आई हैव स्टार्टेड माय ओन, कोशिश कर रहे हैं हम लोग एक सूफी म्यूज़िक को यू नो लाइव इनकॉपरेट करने की. मतलब लोग करते हैं बट मैं उसको अपनी तरीके से यू नो थोड़ा अलग अलग म्यूज़िकल जॉनर्स में उसको इनकॉपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो उसका नाम सूफी नामा है और अभी हमने कुछ शोज़ किए हैं उसके, और आई थिंक जो म्यूज़िक मुझे सुकून देता है वो मुझे करने का मौका मिल रहा है. तो सूफी म्यूज़िक नुसरत साहब, राज साहब और शफकत अमानत अली साहब, इन सब के गाने को एक साथ लेकर उसको कुछ अलग ट्विस्ट करके हम परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं.
एकादा कोई ऐसा है जो हमें?
गाने तो सारे आपने सुने ही होंगे. आई थिंक द अरेंजमेंट इज़ द की. जो गाने अगर आप मान लो मस्त कलंदर मस्त मस्त मह, तो वो अगर आपने ओरिजिनल सुना हुआ तो उससे बहुत ही अलग उसको रॉक और पूरा स्वैंकी और पूरा मतलब बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं.
यस, थैंक यू सो मच. इट वाज फैंटास्टिक लिसनिंग टू यू टॉक एंड सिंग.
मुझे बड़ा मजा आया ये इंटरव्यू देते हुए, और मैं चाहूंगा कि आप इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें.
थैंक यू सो मच. थैंक यू.
मजा आ गया.
Rightly said by Divya Kumar, it's important to hone your skills, strengthen your core so that you are prepared and ready to give your best. Being patient and not succumbing to shortcuts definitely makes sense. I hope guys you have enjoyed this episode, and I would also suggest you to give a listen to some other episodes of this podcast, as you will definitely find some really amazing, inspiring interviews. I want to thank all you listeners of 9XM Soundcast for giving your valuable feedback and lovely comments on our social media pages. Follow us on Instagram and Twitter, handles are mentioned. You can also suggest me your favorite artist and we will try our best to get them on this podcast for you. Subscribe to it so that you don't miss an episode. Hit the follow icon if listening on Spotify. See you next week with a brand new artist who will entertain and inspire us. Bye-bye.